वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सब लोगों का स्वागत है आज के 11 फरवरी के बरसाना कैंप के सत्संग में। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो कल की हमारी जो कहानी थी वो राधा रानी कैसे वापस आ गई शिवपुर से पासवान पुरी थी, और कालांतर में वो राधा रानी का जो मंदिर है वो जीर्ण हुआ। हम सब जानते हैं और जानते भी होंगे कि ब्रह्मा जी के चार पर्वत हैं, चार शिखर हैं, भानुगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़ और मानगढ़। तो ये चार पर्वत तो ऐसे ही थे, लेकिन जो मंदिर बना हुआ था वो जीर्ण हो गया। तो उस समय राजस्थान के राजपूत राजा थे सवाई माधोराव, उनके नाम पे स्टेशन भी है सवाई माधवराव जंक्शन। तो वो बड़े वीर थे और उन्होंने सोचा कि राधा रानी के लिए एक सुंदर मंदिर बनना चाहिए। तो दानगढ़ में वैसे एक मंदिर है जिसको दान बिहारी कहते हैं, और वहां पर झूला है और वहां पर रासमंडल है। साकरी कोर में जो गोपियां और भगवान लड़ते हैं उनकी लीलाओं का वहां पर दर्शन है। तो दानगढ़ में मंदिर था, लेकिन दानगढ़ में जगह भी खाली थी। सोचा उन्होंने कि यहीं पर मंदिर बनाया जाए, तो उन्होंने वहां पर मंदिर बनाना आरंभ किया। आप लोग में से कितने वो मंदिर में गए आज तक? बहुत भव्य पीले रंग का मंदिर है ना, बहुत सुंदर, उसमें क्या कहते हैं उसको, हाँ थैंक यू, वो पत्थर पर बहुत सोरी काम किया ना, बहुत जयपुर मंदिर कहते हैं उसको। वो इतना विशाल मंदिर है और हाथी के ऊपर पत्थर को ढोढो कर पहाड़ पर लाया गया, कितना मुश्किल काम है। सीमेंट भी ईट भी लाना है तो भी कितना मुश्किल काम है। अंदर सीमेंट है और ईट भी है, लेकिन बहुत सारा पत्थर का काम है उसके अंदर, और जितने मेन मेन काम है वो सब पत्थर में बने हुए हैं। ऊपर से प्रवेश द्वार पर एक सूर्य देव का कांच में बनाया हुआ एक यंत्र है, उसका रंग बिरंगी प्रकाश अंदर आता है, बहुत सुंदर है। आपने देखा नहीं होगा शायद, ऊपर के स्तर पर है वो, और एक मंदिर भी है ऊपर, और बाद में रहने के भी बहुत महल है ऊपर, ऊपर छत भी है बहुत विशाल, बहुत सुंदर। इतना सुंदर मंदिर बनाया है कि जो तुलसी वृंदावन है बाहर उसके अंदर भी इतना सुंदर पत्थर पर काम किया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में जो हाथी सवार घुड़सवार ऐसे पत्थर में भी रचना की गई है, और जितने भी घर हैं उसके जो इतने महल जितने भी खिड़कियां हैं उसमें भी बहुत सुंदर काम है, और कोई मेंटेनेंस नहीं है। इतना बिना मेंटेनेंस के भी वो इतना सुंदर स्थिति में आज भी है, तो वो जब बना हुआ होगा तो उसमें कितना सुंदर होगा। ऐसे कहते हैं ना, प्रेम से बनाया उसको, इतने सुंदर प्रेम से, फुर्सत से, प्रेम से, पूरी कला कुसर लगाते हुए। पर ऐसा नहीं कि वो मंदिर बनाने के बाद में जिन्होंने उसको बनाया सबके हाथ तोड़ दिए। हम लोग कहते हैं ना कि प्रेम का प्रतीक कौन सा है दुनिया में, तो वो गलत नाम लेते हैं। प्रेम का प्रतीक नहीं है वो, क्रूरता का प्रतीक है। मैं कभी नहीं गया उधर, मैं एक बार गया था आसपास में, लेकिन मैं नहीं गया उधर, क्योंकि दुनिया समझती है कि वो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन वो क्रूरता का प्रतीक है। और एनीवे वो क्यों कहे हम, लेकिन इतनी सुंदर कारीगरी करने के पश्चात किसी को उन्होंने हानि नहीं पहुंचाया कि दूसरा ऐसा मंदिर कहीं बनना नहीं चाहिए। और वो उनके मन की एक बहुत ही सुंदर इच्छा थी कि राधा रानी को एक नया मंदिर दिया जाए। और पता नहीं कई साल लगे होंगे उसको बनाने के लिए। तो जिस तरह से आज भी मंदिर आपको दिखाई पड़ता है, जितना भव्य मंदिर है, बाजू में जितनी व्यवस्था है, प्रवेश द्वार की बहुत सुंदर व्यवस्था है, तो कई साल लग गए होंगे। फिर एक दिन वो मंदिर पूरा हुआ, पूरी तरह से पूरा हुआ, और राधा रानी का बैठने का स्थान हो गया, और तीन और दो, एक हंस भगवान के लिए, एक और किसी के लिए बना, बहुत सुंदर विशाल व्यवस्था हुई, ऐश्वर्य संपन्न व्यवस्था हुई। और अभी सब कुछ तैयार है, वस्त्र भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, और अभी कल वो मुहूर्त है कि राधा रानी का विग्रह भानुगढ़ के महल से इस मंदिर में आने वाला है। सब तैयारी हो चुकी है। और उस रात को वो उनको स्वप्न आता है, राधा रानी स्वप्न में आती है और बताती है कि मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी, क्योंकि वो मेरा घर है, जिसको कहते हैं निज महल है, यानी इट्स माय ओरिजिनल होम, मैं किसी भी कीमत पर वहां से यहां नहीं आ सकती। तो मैं हमेशा ये पूछता हूं, ये कथा बताने के बाद, कि अगर आप वो राजा होते तो राजा रानी को क्या कहते, क्या कहेंगे? एनीवन राजा बनकर बोल सकता है कुछ समय के लिए क्यों ना? यस। अरे पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ा पहले बताते तो इतना मेहनत नहीं करता मैं। ऐसे हम लोग का नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर मैं जिस दिन मैं शुरुआत किया, जिस दिन मैंने संकल्प किया, जिस दिन मैंने आर्किटेक्चरल प्लान बनाया उसका कि ऐसे बनाना है, उस दिन स्वप्न में आती तो फिर मैं इतना आगे बढ़ता नहीं, इतना समय, इतना ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना कला कुसर, इतने कारीगर लगे उसके अंदर, और आपको उधर आना ही नहीं था, तो इतना बनने क्यों दिया आपने? ऐसा हमारा एक सहज प्रतिसाद है। लेकिन राजा ने ऐसे कुछ नहीं कहा। तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। राजा ने मंदिर किस लिए बनाया था? कि राधा रानी के आनंद के लिए एक नया मंदिर बनाया जाए। तो राधा रानी का आनंद इसमें हमेशा केंद्र स्थान में था, फोकस में था। टू प्लीज हर वॉज एट द फोकस, एट द सेंटर ऑफ द होल एक्टिविटी। ये नहीं था मन में कि राधा रानी के लिए आनंद के लिए जो मैं मंदिर बनाऊंगा वो विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर होगा और लोग मुझे याद करेंगे कि मैंने ये मंदिर बनाया, इस तरह का भाव नहीं था उसमें। मैं अभी 50 ऐसे विकल्प आपको बता सकता हूं कि ऐसा भी हो सकता था, ये भी उद्देश्य हो सकता था, लेकिन उसमें से कोई भी उद्देश्य नहीं था उनके मन में, केवल राधा रानी का आनंद, यही उनके मन में एक निस्वार्थ उद्देश्य था। जब कोई स्वार्थ नहीं होता ना, तो आपको बुरा नहीं लगता है। जब किसी चीज में स्वार्थ होता है और वो हमारे स्वार्थ के, गुप्त स्वार्थ के खिलाफ होता है, तो हमें क्रोध आता है और हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्शन देते हैं। लेकिन जब किसी भी प्रकार से हमारे मन में स्वार्थ नहीं होता है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम। तथास्तु, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपको, जिसमें आपको सुख होगा वो किया जाएगा। मतलब तत्क्षण उन्होंने स्वीकार किया उसको, उनकी इच्छा को, क्योंकि वो खुद की इच्छा के लिए उनको शिफ्ट नहीं कर रहे थे। उनको लगा था कि राधा रानी को मैं यहां पर बिठाऊंगा तो उनका गौरव बढ़ेगा। लेकिन जब ये बात उन्होंने बताई कि वो मेरा निज धाम है, वहां से मैं इधर नहीं आ सकती, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और दूसरे विग्रह बनवाकर उसको किसी और चिन्ह पे उनको स्थापना किया। उनका नाम क्या है? राधा कुशल बिहारी मंदिर। तो जब भी मैं जाता हूं वहां पर, तो मैं देखता हूं कितना सुंदर मंदिर बनाया। आम आदमी को दुख होगा कि अरे इतना मंदिर मैंने सुंदर बनाया, कितना अच्छा होता राधा रानी अगर वहां पर आती, लेकिन उनको दुख नहीं हुआ। उनके राजा थे वो बहुत ऐश्वर्य संपन्न बड़े धनी थे, लेकिन उनके अंदर की हृदय की जो भावना थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझना बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चिंतन और मनन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही जो चेतना धाम में यहाँ पर भक्तों ने अपनी व्यक्त की है, प्रकट की है, उसी को पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। बाकी साइट सीइंग के लिए बहुत साइट्स है यहाँ पर, ये मंदिर सुंदर है, वो मंदिर सुंदर है, इधर का सुंदर है, उधर का सुंदर है, हम लोग धाम में साइट सीइंग करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन साइट सीइंग अपने आप हो जाता है, सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हम सुंदर सुंदर चीजें अपने आंखों को प्रसन्न करने के लिए देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम लोग यहाँ पर धाम में आए हैं, श्री जी के धाम में आए हैं, श्री जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए आए हैं, श्री जी को अपना जीवन समर्पित करने के लिए आए हैं, श्री जी का जो प्रिय है वो करने के लिए आए हैं। व्हाट एवर प्लीजेस हर आई वॉन्ट टू डू इट, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, मैं आपके धाम में आया हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहता हूँ, ताकि आप प्रसन्न हो, आपके भक्त प्रसन्न हो, जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार मैं आपको चरणों में शरण आकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये जो जब हम ये सब स्थानों को दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी, से सब स्थाने हेरी भी ओमी प्रणयी भक्ति संगे। तो फर्क कहां पड़ता है, जब हम भगवान के प्रेमी भक्तों के साथ में इनका दर्शन करते हैं, और हम अकेले जाते हैं तो हमारी स्वार्थी इच्छाएं ऊपर आती है, अरे क्या कितना कष्ट है, यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, यहाँ पर क्या बात, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाए, भूख लग रही है, ये वो है, दर्शन बराबर से नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हम लोग अपनी शहरी भौतिक चेतना को लेकर यहाँ आते हैं, वी कम विथ अवर सिटी मेंटेलिटी विथ सेल्फिश मोटिवेशंस। इसलिए कहा गया कि से सब स्थाने हेरी बोमी प्रणयी भक्ति संगे, जो भगवान पर प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों के साथ जब जाते हैं तो वो पहले से आपका मूड बना देते हैं। तो स्टैंड को बाजू करो, तो ये जो भाव है पवित्र स्थानों में जाने का वो तैयार करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम उनको ओरिएंटेशन देते हैं मुंबई में, हम लोग पिकनिक में नहीं जा रहे हैं, लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, लोग धाम दर्शन में जा रहे हैं, लोग धाम की चेतना को, धाम के कॉन्शियसनेस को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और जैसा जितना हमारा आत्मा की चेतना सही जगह पर रहेगी उतना धाम की चेतना को आप पकड़ पाएंगे, जितना आपका फाइन ट्यूनिंग ठीक हो गया उतना ही आपको आवाज आएगी रेडियो से ठीक से आएगी, जिस सेंटर पर आपको जाना है और जिसकी आवाज सुननी है। इसलिए सब स्थाने हेरी बोमी प्रणयी भक्ति संगे, क्योंकि जब प्रणयी भक्त भगवान के प्रेमी भक्त अपनी प्रेमी चेतना से उसका वर्णन करते हैं तो वो हम ग्रहण कर सकते हैं, उनकी चेतना के द्वारा देख सकते हैं। जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारी चेतना बदल जाती है, और हमने कसम बड़ा बड़ा खाया कैंप में, और फिर हमने पता आपको पता चला कि आपको पता है जो बंबई में जिनके चेन ऑफ होटल्स हैं उनको कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, वो खाली गल्ले पर बैठते हैं और फोन करते हैं और अपना काम चलाते हैं, सब उनके होटल चलते रहते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने हाथ से ये राधा रानी की सेवा में बनाते हैं, वो कोई जरूरत नहीं करने की, तब आपका वो बड़ा खाने का जो भाव है वो चेंज हो जाएगा, वही है बड़ा टावड़ा, लेकिन जब उसके पीछे की भावना आपने सुनी है तो आपको उसके ग्रहण करते समय वो भाव जो है ना आपके हृदय का बदल जाएगा। जब आप कोई जलेबी खा रहे हो और आपको बाद में पता चला कि ये जलेबी साक्षात आज राधा रानी के राजभोग के थाली से आई है, तो फिर आपको उसका जो खाने का जो भाव है ना वो चेंज हो जाएगा तुरंत। तो धाम में कहते हैं कि कान से देखना चाहिए, तो कान से कैसे देखें, कान से सुनकर जो हृदय का भाव बनेगा उससे जब हम देखेंगे तो हमारे आंखों को वो सही दर्शन होगा। सही दर्शन वो नहीं होता है जो आंखों को दिखता है, सही दर्शन वो है जो कानों के माध्यम से हृदय को समझ में आता है, और जब उसको देखते हैं तब वो भाव बदल जाता है। तो वैसे हम हमारे आचार्य भी बताते हैं कि जाएंगे कोई भी आर्किटेक्चरल स्टूडेंट जाएंगे वहां पर, तो क्या कहेंगे कि कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है, तो फोटो निकालेंगे, तो स्टडी करेंगे कैसे बनाया होगा। तो जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसे वो देखता है, लेकिन धाम में हर प्रकार के दृष्टि की परिपूर्णता है। आर्किटेक्चरली भी वो परफेक्ट है, लेकिन आर्किटेक्चर उस मंदिर का सर्वस्व नहीं है, स्थापत्य शास्त्र सर्वस्व नहीं है। उसके पीछे राजा ने जो अपना चेतना लगाई है, उसके अंदर जिस भाव से उसको बनाया है राजा रानी की प्रसन्नता के लिए, उसको ग्रहण करेंगे तो हमारा दर्शन परिपूर्ण हो जाएगा। विजिटिंग दैट प्लेस विल बी परफेक्ट। इसलिए जितनी बार मैं जाता हूँ वहां पर, जितनी बार मैं खिड़की के झरोखों को, डिजाइन को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अरे इतना मेहनत किया उसने, राजा रानी नहीं आई। हमारे आचार्य भी बताते हैं, हाँ, अश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरहा। बहुत बड़ा श्लोक है, आठवां श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने जो भक्त के रूप में यहाँ पर आए तो लिखा, और भक्त के भाव से लिखा, भगवान के भाव में नहीं लिखा। एक भक्त भगवान से बोल रहा है कि भगवान मैं आपका भक्त हूँ, और मेरी भक्ति करते समय मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें अगर आप मुझे अच्छा फल भी देंगे तो भी ठीक है, मेरे मन के जैसा इच्छा नहीं पूरी होगी तो भी ठीक है, यहाँ तक कि आप मुझे कुचल दोगे विनष्ट माम तो भी ठीक है, आप मुझे गले लगाएंगे तो भी ठीक है, ठुकरा देंगे तो भी ठीक है, अपना लोगे तो भी ठीक है, दूर भेजोगे तो भी ठीक है। पास बुलाओ दूर भगाओ मैं सब विधि शरण तिहारी राधे आ जाओ गिरिधारी। मतलब आप जो कुछ भी चाहे वो करने के लिए फ्री हैं, समर्थ हैं, कर सकते हैं, और कीजिए जरूर, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। ये मत सोचना कि मुझे क्या लगेगा, मेरी चाहे इच्छा हो या ना हो, मेरी इच्छा आपके मिलन की हो या ना हो, और आपको मुझे मिलना हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंड में क्या कहा है, मत प्राण नाथस्तु स एव ना परहा। मत प्राण, मैं हमेशा मेरा प्राण आप ही रहोगे, और आपके बिना और कुछ नहीं होगा, हमेशा आप मेरे नित्य आराध्य प्राणेश्वर रहेंगे। कुछ चल भी दोगे तो भी रहोगे, गले लगाओ तो भी रहोगे, ये बहुत सर्वोच्च भाव है। और ये भाव किसका है, ये भाव गोपियों का है। गोपियों को भगवान ने 10 साल 4 महीने तक, कोई कहते हैं 11 साल 52 दिन तक उनको पूरा अंग संग दिया, फिजिकली वह विद्यम, और तुरंत निकल गए, अभी आ रहा हूं, परसों आऊंगा, शीघ्र आगस्य, 2 दिन में आऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन गए वो गए, वापस नहीं आए, 125 साल की उम्र में आए लौटकर। तो कितना दूर था मथुरा यहां से, आज भी 11 ही, आज भी यहां से 50 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। और उन दिनों में रोज गोपियां चलकर जाया करती थी मथुरा में दही बेचने के लिए, वैसे रोज जा रही, वैसे जा सकती थी वो, कहाँ है हमारा कन्हैया, क्यों नहीं आ रहे भाई, तुमने बोला था हमको परसों आएंगे, भाई अराउंड कर हम, लेकिन नहीं गए वो, क्योंकि वैसा आदेश नहीं था। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, आदेश यहां रहने के लिए था, रहो मैं आऊंगा, और क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं समझते थे अपना कि क्यों नहीं आए, जवाब दो, स्पष्टीकरण दो, क्यों नहीं आए। तो ये समर्पित भाव था उनका कि जैसे आपकी इच्छा है वैसे। और एक भी कहा गया है कि राजा रानी क्यों नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी मैं जाऊंगी तो सब ब्रजवासी लोग अपना आत्मत्याग हो जाएगा, आत्महत्या नहीं करेंगे लेकिन वो शरीर छूट जाएगा उनका, तो ब्रज में ब्रजवासी उनको बनाए रखने के लिए राजा रानी यही रही पीछे, जैसे सब ब्रजवासी उनको देखकर जीवित रहे कि इनको देखकर तो आएंगे एक दिन, तो वेट करते रहे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैतन्य शिक्षाष्टकम के श्लोकों का आखिरी श्लोक है, जिसमें गोपियों का जो चरम भाव है ना भक्ति में, कि भक्ति में मुझे कुछ मिलेगा ये भी अपेक्षा नहीं है, कि मुझे भगवान प्राप्त होंगे मेरे भक्ति के फल के अनुसार, अंतिम स्थिति के अनुसार अंतिम फल मुझे प्राप्त होगा, भगवान मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों में रहूंगा, मैं आलिंगन दूंगा उनको, मुझे आलिंगन देंगे, मुझे अपना बनाएंगे, अपने पास रखेंगे, ये भी इनके मन में अपेक्षा है। इसलिए लोग हमारे संप्रदाय के विषय में कहते हैं कि क्रांतिकारी संप्रदाय है, कि इसमें कोई लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। अभी लक्ष्य है, अभी हम बद्ध अवस्था में तो चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, लेकिन उसके आगे जाएंगे तो लगेगा कि हमको मुक्त भी नहीं होना है। जहां आप रखेंगे वहां रहेंगे, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, पास में रखो, दूर रखो, कुचल दो, कहीं भी रखो, लेकिन सेवा में रखो और हम आपके सेवक बने रहेंगे। मत प्राण नाथस्तु स एव ना परहा, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम आपकी सेवा छोड़ देंगे और कहेंगे बस हो गया, अभी अभी इससे आगे सहा नहीं जाता, नहीं करने इनकी भक्ति हमको, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान उन गोपियों पर इतने रिझे हुए थे, इसीलिए दिन रात उनकी याद करते थे। द्वारका में रहकर भी 16108 रानियों का विवाह करने के पश्चात रोज उनको उनका स्मरण करते थे और उनकी रानियां भी परेशान थी, ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं। तो यही भाव, हर व्यक्ति कृष्ण की गोपी नहीं है लेकिन गोपी भाव को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो यही गोपी भाव जो है वो उस राजा का था। वो बड़ा वीर शूर, ऐश्वर्य संपन्न, अधिकार संपन्न, पावरफुल, सर्वशक्तिमान राजा था। वो वीर था बहुत, लेकिन कभी भी औरंगजेब का आक्रमण वहां उन्हें नहीं दिया राजस्थान में, राजपूत एरिया में। लेकिन बाहर से वीर और अंदर से कोमल हृदय का भक्त था वो। उसने कोई भी ऐसा क्या कहते हैं उसको, तिलमिलाहट नहीं दिखाई। He didn't show any agitation. अरे इतना मेहनत करने में भी क्या फायदा है भक्ति करके? वो इतना स्वप्न में आने की उनकी शक्ति थी, तो पहले स्वप्न में आते ना, मैं कुछ हमारा समय अलग देश में लगाता, कुछ अलग सेवा करता, अलग बढ़िया काम करता। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके संतुष्टि के प्रति अगर समर्पित है, सी वन हु इज सरेंडर्ड और डेडिकेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द बिलवेड टू हुम यू आर सर्विंग, उसके लिए और कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर मोटिवेशन। तो हमें भी हमारे हर कार्य में अभी प्रयास करना है इसके आगे। आज तक का ट्रेनिंग कैसा है कि मैं जो भी कर रहा हूं उसके अंत में जो भी होगा तो मुझे खुशी मिलनी चाहिए, फाइनली आई शुड बी हैप्पी। कितना भी हम परमार्थ करेंगे, कितना भी समाज सेवा करेंगे, कितना भी बताएंगे या कहेंगे या करेंगे, लेकिन अंदर रहता है कि मुझे खुशी नहीं मिली। मुझे मिलेगी और उनको मिलेगी तो ठीक है, उनको मिलेगी और मुझे नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगा। या उनको नहीं मिलेगी लेकिन मुझे मिलनी चाहिए, कितने कॉम्बिनेशन है ना उसके। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो हमें जो बनना है, हमें जो सीखना है वो ये है कि मुझे मिले ना मिले, जिनके लिए कर रहा हूं उनको जरूर मिलना चाहिए। और अगर उनकी खुशी जो मैंने किया उसमें नहीं है, दूसरी चीज में है, तो भी मुझे एक्सेप्ट है, मुझे स्वीकार है उसको। ये एक महान भाव है। इसको बहुत क्या कहते हैं ना, भगवद गीता के 18वें अध्याय में ना इस विरक्ति का भाव लिखा गया है। विरक्ति एक जगह पर है और विरक्ति का जो सार है वो दूसरी जगह पर है। भगवान कृष्ण अंतिम बताते हैं कि अरे ये सब कुछ जो है वो मेरा ही तो है, अब त्याग क्या करने वाले हो? त्याग करने के लिए पहले आपका कुछ होना चाहिए ना। मैं आपके घर पे आया, बोला कि आपका टेलीविजन मैं त्याग कर देता हूँ। टेलीविजन तो मेरा था ही नहीं कभी, तो मैं कैसे त्याग करूंगा? आपका कोच जो है बैठने का सोफा मैं त्याग कर देता हूँ। तो जैसे आप अभी हंस रहे हो वैसे ही भगवान हंसते हैं जब हम सोचते हैं कि मैं कुछ त्याग कर रहा हूँ। तो पहले से तुम लाए थे क्या? तुम्हारा कुछ था क्या इधर? और अगर तुम्हारा कुछ था तो तुम लेके जा सकते हो, और लेके जाने में आपकी क्षमता होनी चाहिए। इफ यू थिंक इट इज योर्स, बट ये शरीर भी हमारा सोचते हैं मैं मेरा है, वो भी हम लेके जा नहीं सकते हैं, तो कैसे वो हमारा हो गया? जैसे डॉक्टर संकेत उदयन बता रहे थे ना कि सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, अभी मैं ये सहन नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि जो दूसरे की प्रॉपर्टी है वो कैसे आप नष्ट कर सकते हो? आपने संन्यास लिया, मतलब आपने अपना शरीर मन वाचा त्याग कर दिया मेरी सेवा में। अभी वो आपका शरीर, आपकी वाचा और आपका मन जो है मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें से किसी चीज को नष्ट करने का अधिकार आपको कैसे है? तो आपका है ही नहीं, तो सेवा में लगाओ। तो यही तत्व जो है राजा ने अपने विचारों में और कृति में दिखाया। He showed in action, in reality, कि मैंने बहुत भव्य कार्य किया है और किया होगा, लेकिन अगर आपकी वो इच्छा नहीं है, इट इज ऑल राइट माई लॉर्ड, राधा रानी मेरी आपकी ही इच्छा ही मेरी सुख की एक ही क्या कहते मार्ग है मेरा सुख का। तो इसलिए अभी आप जब जाएंगे दर्शन करने के लिए तो उस मंदिर जाके दर्शन जरूर करना, लेकिन इस भाव पर जरूर चिंतन करना और उसके मंदिर की भव्यता देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा त्याग है। जितनी बड़ी भव्यता है ना उससे बड़ा त्याग है उनका। अरे छोटी सी एक रोड के साइड पे होता है हनुमान का मंदिर होता है ना छोटा सा, या थोड़ा शिवलिंग का मंदिर होता है, तो कोई गवर्नमेंट आके तोड़ भी देगा तो इतना दुख नहीं होगा, छोटा बजट था ठीक है और फिर शिफ्ट करेंगे। लेकिन 5 एकड़ के जगह में भव्य बना दिया और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ये इलीगल है और एनक्रोचमेंट है, उसको निकाल देंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा, इतना मेहनत गया उसके पीछे। लेकिन जिसका लक्ष्य भगवान की संतुष्टि है उसको कष्ट नहीं होगा। और एक जीवन के अगर आपको जीवन में खुद को अगर खुश रहना है और आपको परमानेंट खुश रहना है समझो, तो भी एक फॉर्मूला है, इसे हमारे बाइबल में लिखा है कि अगर आपको इस विश्व में इस जीवन में सुखी रहना है तो क्या करना चाहिए, इस दुनिया में सुखी होने का प्रयास करना बंद करना चाहिए। कितना विपरीत आंसर है ना, जिस दुनिया में सुख की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें अगर सुखी रहना है तो उस दुनिया में सुखी होने का प्रयास करना बंद करना चाहिए। उसका प्रयास करने बंद करने से आप सुखी हो जाएंगे। अगर आप अभी करेले के झाड़ पे अगर आपको आम को आम ढूंढना है तो आप कितना भी ढूंढेंगे ना 10 साल 15 साल 50 साल के बाद में आके भी ढूंढेंगे तो आपको करेले के पेड़ पे आम नहीं मिलेगा। आगे पीछे नीचे ऊपर नीचे चारों दिशा में 8 दिशा में 10 दिशा में किधर भी आम नहीं मिलेगा, क्योंकि आम वहां पर आने की गुंजाइश व्यवस्था नहीं की गई है। तो आम के पेड़ ही मिलेगा, करेले के पेड़ पर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ये नुस्खा है, ये फॉर्मूला है, अगर आपको इस विश्व में वास्तव में खुश होना है तो आपको और हमको सबको मिलकर भगवान की खुशी में ही अपना मन लगाना है। और भगवान की खुशी में अपना मन लगाएंगे तो केवल भगवान की खुशी के लिए कोशिश करने से भी आपको खुशी मिलेगी। अभी वो खुश नहीं हुए, अभी होएंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये मेरा बालक कोशिश कर रहा है मुझे खुश करने की। जैसे आपका बालक अभी आपके बर्थडे के ऊपर दुकान में गया है चॉकलेट लेने के लिए, आपके लिए ये छोटा सा केक ऑर्डर करने के लिए गया हुआ है, और आप जानते हैं कि इसका उसके पास तो एक भी इनकम का साधन नहीं है। मैंने जो पॉकेट मनी दिया था वही इसने इकट्ठा किया है और डब्बी में डाल डाल कर आज उसने खोला है और इनफ पैसा इकट्ठा किया है। आज वो एक दुकान में गया, वहां पर वो एग लेस ऑफर किया हुआ केक ऑर्डर करने गया है और कुछ चॉकलेट भी देख रहा है कि ले सकता हूँ टॉफी मेरी मम्मी के लिए। तो आपने आपको अगर पता चला, उसने वो सीक्रेट रखा है लेकिन आपको पता चला, तो अभी तक चॉकलेट और केक आपको लाके नहीं दिया उसने, लेकिन वो गया हुआ है, देख के आपको कितनी खुशी होगी कि देखो। आप ऐसा नहीं कहेंगे क्या बड़ी बात है, मैंने तो पॉकेट में नहीं दिया था, मैंने तो मेहनत किया है, मेरे हस्बैंड ने मेहनत किया है, क्या किया उसने तो बड़ा नहीं। आप वो कभी भी उसका पैसा ये सब बात नहीं करेंगे, उसके दिल में जो भावना है उसी को आप स्वीकार करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 5 रुपए का चॉकलेट दिया क्या बड़ा काम किया, देखो पापा ने कितना 5,000 का गिफ्ट दिया है, तुमने 5 रुपए का चॉकलेट दिया। ऐसे मम्मी कभी बोलती क्या? नहीं बोलेगी। पापा ने दिया हुआ 5,000 का गिफ्ट से भी बेबी ने दिया हुआ 5 रुपए का चॉकलेट ज्यादा मीठा लगेगा, उसको बार बार चुम्मा लेके रोएगी वो कि पता नहीं मैंने कितने जन्म में अच्छे पुण्य किए हैं, तुम्हारा जैसा बेटा मुझे मिला। तो क्या खुशी वो 5,000 रुपए में है क्या? तो खुशी वो बड़े मंदिर बनाने में है क्या? नहीं, खुशी वो आनंद जो है वो जिनके लिए बनाया उनके आनंद में है, और उनका आनंद किसी चीज में है उसको स्वीकार करना ही खुशी का राज है, पूरा रहस्य है। सीक्रेट ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज द लॉर्ड्स हैप्पीनेस। तो उसी के उपलक्ष्य में अभी वो दूसरी कहानी बताऊंगा आज। तो 2 दिन पहले पूर्णिमा थी, रविवार को आधी आधी पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा, माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है ना, वो हमारे गुरुदेव ने मुझे पर्सनली बताया था कि ऐसा दिन है ये, इस दिन में आप जो भी संकल्प करेंगे वो चिरंतन यानी इटर्नल हो जाएगा, इटर्नल। वॉट एवर यू डू ऑन दैट डे, वॉट एवर यू बिगिन, वॉट एवर यू डू विल बी इटर्नल। इसलिए लोग माघी पूर्णिमा को अच्छा मुहूर्त समझ के अच्छा काम शुरू करते हैं उस दिन। अगर आपको भी सुबह जल्दी उठ के जब करना है तो वो तरीके से माघी पूर्णिमा को मैं शुरू करूंगा उसको, भागवत का पढ़ाई शुरू करना है तो मैं माघी पूर्णिमा को शुरू करूंगा, ताकि उसमें यश प्राप्त होगा और सातत्य बना रहेगा और यू नो जो उसमें करना चाहिए वो हो सकेगा, यश मिलेगा उसमें। तो माघी पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बड़े ही शुद्ध आचार्य हैं। बहुत मशहूर है इसलिए नहीं, उनके लिए वो मशहूर है क्योंकि उनका हृदय का भाव जो है ना वो बहुत ही क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट था, बहुत ही विशिष्ट था, बहुत ही अलग था। और उन्होंने बहुत सारे भजन संग्रह लिखे हैं, प्रार्थना इस टाइप के उनके संग्रह हैं भजन, और बहुत ही गहराई में कृष्ण लीला के विषय में चिंतन किया है। और जो जो भजन लिखे हैं वो सारे उन्होंने दर्शन किए हैं, जो देख रहे हैं साक्षात दर्शन करके जो दिख रहे हैं वो लिख रहे हैं। जैसे वो सूरदास थे ना, वो तो आंखों से अंधे थे बाहर से, लेकिन सूरदास जी हम जितनी सबकी हमारे आंखें हैं उससे ज्यादा देखते थे वो। उनकी दृष्टि जो थी ना वो अंतर चक्षु से थी, बाह्य चक्षु से नहीं थी। दैट इज द होल पॉइंट। वो बिना देखे ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया उसका वर्णन करते थे। एक बार ऐसा ही उन्होंने उनके लिए आते पर्दा बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा पर्दा बंद कर क्यों किया, अभी वो तो 100% अंधे हैं। ये राधा कुंड की कहानी है, जगन्नाथ जी के मंदिर में बंद कर दिया, बोले पहले उन्होंने आज क्या पहना है वो बताओ। तो उन्होंने बताना शुरू किया, वो भी काव्य में पोएट्री वन आफ्टर अनदर। फिर वो जगन्नाथ के विषय में उन्होंने बताना शुरू किया, वो जगन्नाथ कैसे हैं। फिर वो उनका जो है ना अभी तक खोल नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा, अरे ये तो नंद के बेटा है, तो नंद को बुढ़ापे में बच्चा पैदा करने का दिल हुआ, ऐसे शुरू किया बताना उन्होंने। स्टार्टेड टॉकिंग यू नो व्हाट यू कॉल हाउ टू से इन अ वेरी क्रिटिकल मैनर बट लविंगली। तो जब नंद बाबा पे उतर गए तो उन्होंने पर्दा खोल दिया, बस आगे मत जाओ और आगे क्या क्या कहेंगे क्या मालूम। ऐसी कहानी है उनकी, वो तो प्रेम की कहानी है, तो कुछ ऐसे अभद्र उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इज नॉट टॉकिंग इनऑस्पिशियस। पर कहने का तात्पर्य है कि अंधा होने पर भी हृदय में जो भक्ति की दृष्टि थी उनको वो सर्वश्रेष्ठ थी। और उन्होंने जो भी लिखा है उनके ना भजनों के संग्रह है और 6 खंड है उसके सूरदास के। इन दिस लाइफ टाइम यू कैन स्टडी एंड अंडरस्टैंड, इतने सारे उनके भजन है ब्रज भाषा में है, यहाँ तक कि मान मंदिर की लीला भी है ना उन्होंने वर्णन की हुई है, बहुत सुंदर भाव है उनका। तो वैसे ही सारे जितने आचार्य हैं जिन्होंने भजन लिखे हैं कविता लिखी है कोई लीलाओं का वर्णन किया है, वो लीलाएं उन्होंने कल्पना करके नहीं लिखी है, जो जो उनको दिखता था वो लिखते थे वो। तो उस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है, भगवान की आरती का वर्णन किया है, जमुना जी में वृंदावन धाम में क्या हो रहा है, जलाशय में क्या हो रहा है, राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके विषय में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। तो वो आचार्य का जन्म जो है वो उस दिन हुआ था माघी पूर्णिमा में, करीब 350 साल पहले की बात है। चैतन्य महाप्रभु के बाद में शेख गोस्वामी के बाद में तीसरी पीढ़ी के आचार्य थे वो। और जन्म से वो कायस्थ थे, यानी राजा के पुत्र थे, राजपुत्र थे, लेकिन राजा जो है वो थोड़ी निचली जाति का था, लोग सम्मान करते थे लेकिन जाति में वो नीचा था। 3 भाई थे वो। तो नरोत्तम जो थे उनके जन्म के पहले क्या हुआ पता है, जन्म के पहले भी जन्म होना बाकी है, खितुरी ग्राम आज बांग्लादेश में है, पुराने भारत में था वो, विभाजित होने के बाद बांग्लादेश में गया, लेकिन आज भी वही है खितुरी ग्राम, पद्मा नदी वहां बहती है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे विश्व में थे तो चैतन्य महाप्रभु सब जगह पर कीर्तन करते करते जाते थे, तो अचानक पद्मा नदी के किनारे रुक गए भक्तों को लेकर, हाँ, और पुकारने लगे नरोत्तम नरोत्तम, आप बोलो सब लोग कैसा, जो इतना जोर से नहीं, जोर से और बोलना पड़ेगा, नरोत्तम नरोत्तम जय हो। तो जैसे ये महाप्रभु उच्चारण किए जोर जोर से तो किसी भक्त ने उसका नाम नहीं सुना था, मतलब वो नाम उनके पार्षदों में कभी उच्चारण नहीं हुआ था उसका, कोई था नहीं उस नाम का। तो सब भक्तों ने पूछा जब भगवान का आवेश शांत हुआ कि कौन है ये नरोत्तम, हम नहीं जानते उनको, कहाँ रहता है वो। तो भगवान कहते हाँ कैसे जानोगे आप, अभी तो वो आना है उसको, अभी तो आया नहीं वो, अभी आएगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ समय के बाद में नरोत्तम का जन्म होगा, तो बड़ा बड़ा प्रिय भक्त है वो। और पद्मा नदी के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, और पद्मा नदी तो देवी है ना, वो तो नदी के रूप में बह रहे, लेकिन वो तो है देवी, भगवान की भक्त है वो। पद्मा नदी वहां पर प्रकट हो गई, महाप्रभु भगवंत स्वयं आए तो प्रकट हो गई, तो उन्होंने उनको आदेश दिया, देखो मैं भी तुम्हारे अंदर स्नान करूंगा और मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सारा प्रेम मैं तुम्हारे जल में डिपॉजिट करूंगा, और जब मेरा भक्त यहाँ पर आएगा कुछ समय के बाद जन्म लेकर नदी में, तब आप उसके हृदय में ये प्रेम स्थापन करोगे, ऐसा आदेश दिया उनको। और भगवान ने बड़े प्रेम से स्नान किया और अपना हृदय का पूरा प्रेम उसमें अर्पण किया और फिर भगवान चले गए। फिर भगवान अंतर्धान हो गए, लीला समाप्त हो गई, भगवान गोपीनाथ छोटा गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश किए और अंतर्धान हो गए जगन्नाथपुरी में। उसके बाद इनका जन्म हुआ, जन्म से बड़े विरक्त थे वो, कोई संसार में रुचि नहीं है। हम कैसे हैं, कितनी हमको इंटरेस्ट है दुनिया में, दुनिया में भोग लेने का कितने इंटरेस्ट है हमको, कितने बड़े प्लान्स हैं हमारे कि ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा ये करूंगा फिर इस तरह से घूमूंगा इस तरह से पहनूंगा इस तरह से चलूंगा, बहुत सारे हमारे सूक्ष्म और स्थूल योजनाएं होती है। इनके मन में कुछ भी योजनाएं थी, इनफैक्ट वो अगले राजा थे, युवराज, कुछ भी किए बिना भी बैठे बैठकर भी राजा बनने का चांस था उनको, लेकिन बिल्कुल रुचि नहीं थी उनको, हमेशा भटकते रहते थे भगवान की याद में। तो छोटे से उम्र में एक दिन नदी किनारे घूमते घूमते गए तो नदी में उतर गए, नदी में उतरते ही ना पद्मा नदी प्रकट हो गई, चैतन्य महाप्रभु जो चले गए वो प्रकट हो गए और दोनों ने उनको आलिंगन दिया बड़े प्रेम से और वो प्रेम पूरा उनके हृदय में एस्टैब्लिश कर दिया और वो प्रेम के आवेश से एकदम बेहोश हो गए। वो इतना प्रेम जब प्राप्त हुआ तो उस प्रेम के प्रभाव से वो बेहोश हो गए, प्रेमातिरेक कहते हैं उसको, एक्सटेसी ऑफ लव, और वहीं पड़े किनारे में और घर पे नहीं आए, 3 दिन हो गए घर पे नहीं आए, सब परिवार ढूंढने लगे। तो उनको ऐसा अपेक्षा नहीं थी कि वो नदी किनारे जाके कुछ किए होंगे, लास्ट में नदी किनारे गए तो उनको बेहोश मिले वहां पर वो, और जब बेहोश से पर होश में लाया उनको तो और भी विरक्त हो गए पहले से विरक्त ही थे और विरक्त हो गए, फिर दिन रात कृष्ण की याद करके पुकारते हुए चलने लगे। तो उनको पता चला कि राजा नहीं बनने वाला है, तो दूसरे बेटे को तैयार करना शुरू किया, ट्रेनिंग ओरिएंटेशन संतोष दत्त को। उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि आपके गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी हैं, वो मेरे आदेश के अनुसार जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए हुए हैं और वहां पर प्रेम भक्ति के आवेश में भटक रहे हैं, उनसे जाकर आपको दीक्षा लेना है। तो फिर वो निकल गए वहां से, उसमें कोई फ्लाइट और गाड़ी और ट्रेन ऐसा कुछ था नहीं, उसमें पैदल चले गए बांग्लादेश से। बांग्लादेश से वृंदावन किधर है, बहुत दूर है, कम से कम 1500 किलोमीटर है, 1000 के ऊपर निश्चित है। पैदल पैदल चढ़ के गए भक्ति आवेश में और उधर उधर देखा कि लोकनाथ जी महाराज तो उनसे भी बड़े, बहुत क्या कहते हैं उसको, भाव में सब कुछ, शरीर का भान नहीं अवधान नहीं कुछ नहीं, घूम रहे हैं वृंदावन धाम में। जब लोकनाथ जी महाराज भूगर्भ गोस्वामी के साथ में वृंदावन में घूम रहे थे ना, तो उस समय वृंदावन सब लुप्त हो गया था, खाली जंगल ही जंगल था। तो वो पुकार रहे हैं भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो उनको भी एक बार उधर उमराव गांव है, यहां से आप जाएंगे ना ऐसे जाएंगे छाता के रास्ते पे जाएंगे तो वो खदीर बनाएगा, खायरा कहते हैं इसको, खायरा के आगे उमराव गांव है, उमराव गांव में वो भजन कर रहे थे तो उधर किशोरी कुंड से राधा विनोद जी ऐसे प्रकट हो गए, पूरे ऐसे प्रकट हो गए और उनके हाथ में आए और हाथ में आकर स्माइल दिया उन्होंने राधा विनोद, और कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं भिक्षा मांग के खाता हूँ। नहीं नहीं, जो जो तुम खाओगे मेरे को भूख लगाना मैं खाऊंगा उसको, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने झोली बनाकर गले में रखना शुरू किया, इतने से ठाकुर जी अभी जयपुर में है ओरिजिनल, बहुत ऐसे बहुत अच्छे सुंदर बालक की तरह हैं, वेरी नाइस स्वीट। तो उनको गले में झोली में पहनकर वो घुमा करते थे, ऐसे उनके गुरु होने वाले, और उनके अश्रु उनके ऊपर बहते थे रोज जैसे स्नान की तरह, नरोत्तम लोकनाथ जी महाराज के अश्रु राजा विनोद के ऊपर बहा करते थे हमेशा। तो ऐसे लोकनाथ जी महाराज के खोज में गए वो, तो मिले उनको उधर वन में, पता चला कि वहां रह रहे हैं। तो गए और कहा कि मैंने, मुझे महाप्रभु चैतन्य का आदेश है कि आपसे दीक्षा लेनी है। तो वो सुनकर कह रहे, अरे आपको साक्षात महाप्रभु जी का दर्शन स्वप्न में हुआ है, व्यक्तिगत रूप में हुआ है, आलिंगन दिया है, कृष्ण प्रेम स्थापन किया है, मैं तो उनके लिए रो रहा हूँ, वो कहाँ है? मैं कैसे आपका गुरु बन सकता हूँ? आप मेरे गुरु होने के योग्य हो। जिनके लिए मैं रो रहा हूँ वो आपके स्वप्न में आ चुके हैं, प्रत्यक्ष आकर आलिंगन दे चुके हैं और मैं वो उनके लिए रो रहा हूँ। तो मना कर दिया, कारण बताया, मना कर दिया। लेकिन इनको तो आदेश था ना, तो वो बताने लगे चलो ठीक है कुछ सेवा तो दे दो। अभी इतने विरक्त थे, इतने विरक्त थे, इतने विरक्त थे कि कोई सेवा ही नहीं है। सेवा किसको कर सकते आप जिनकी कोई है ना जरूरत है भाई, ड्राई फ्रूट चाहिए, कुछ फल चाहिए, कुछ ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा। अभी व्यक्ति को इतनी विरक्ति है कि कुछ चाहिए ही नहीं उसको, तो उन्होंने सोचा कि चलो खुद सेवा नहीं दे रहे, कुछ ढूंढूंगा मैं। तो ढूंढा तो कुछ सेवा ही नहीं है, मतलब रिक्वायर एनीथिंग। थोड़ा बहुत भिक्षा को भी कर लेते, तीन चार दिन में एक बार थोड़ा सा खा लेते बस, उसमें भी क्या सेवा है? भिक्षा तो वही मांगते हैं, मैं उनको भिक्षा ले उनके लिए भिक्षा मांगता दे देगा तो वो नहीं खाएंगे। तो कितना भी कोशिश किया उन्होंने तो भी उनको कोई सेवा ऐसी मिली नहीं। अब ये बालकों को बताना बहुत जरूरी है, उम्मीद है कि आई होप यू आर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। तो इस कैंप में सेवा करने के कैसे करनी चाहिए उसके लिए भी एक यहाँ पर रहस्य है इस कथा में। तो दिन भर में देखा तो कोई सेवा नहीं है, तो रात में जबकि ढूंढ रहे हैं, तो रात में भी भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें भी कोई सेवा नहीं है। बहुत दिन कोशिश किया, बार बार रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा आप तो राजपुत्र हो, युवराज हो, क्यों मेरी सेवा करना चाहते हो? मैं तो ऐसे ही सबसे निम्न व्यक्ति हूँ। हर बार टालते रहे उनको। अभी उन्होंने क्या किया, एक दिन रात भर जग के देखा क्या कर रहे हैं। दिन भर देखा तो नहीं मिला, रात भर जग के देखा तो देखा कि एक जगह पर सुबह बहुत अंधेरे में जाकर शौच करते हैं, टॉयलेट। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया पता है? वो जहां शौच करते हैं उस जगह को साफ रखकर वहां पर एक लोटा पानी रखना शुरू किया उन्होंने। तो लोकनाथ जी महाराज देख रहे हैं, अरे अचानक पानी कहां से आने लगा यहाँ पर, वो भी लोटे में रखा हुआ और जगह भी साफ। एक दो देखा तो रोज वहां पर जगह साफ और वो भी लोटा भी है वहां पर। तो एक दिन वो बहुत जल्दी उठे अपने समय से और झाड़ी में छुप गए, देखा कि कौन साफ करता है इसको। तो देखा तो नरोत्तम दास आंखों में आंसू लेकर उस जगह को साफ कर रहे हैं। तो जाके झपट पड़े उसके ऊपर, नरोत्तम नरोत्तम क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इतना घिलौना काम कर रहे हो? तुम राजपुत्र हो, तुम्हें महाप्रभु का दर्शन हुआ है, तुम्हें महाप्रभु ने आलिंगन दिया है, तुम्हें प्रेम का आवेश दिया है, तुम इतने महान जीव हो और मुझ जैसे तुच्छ जीव की ये तुच्छ सेवा क्यों कर रहे हो? तो नरोत्तम दास जवाब देते हैं कि क्या फायदा है राजपुत्र होने का और ये सब भाग्य प्राप्त करने का, अगर गुरु की कृपा नहीं हो रही तो सब व्यर्थ है मेरे जीवन। मुझे आदेश हुआ है कि आप मेरे गुरु जी हैं और आपकी अगर सेवा मैं नहीं करूं, नहीं मिली तो मेरा जीवन सब व्यर्थ है। सारा मेरा ऐश्वर्य, सारा मेरी जन्म की कथा और मेरा जो भी कुछ आप कह रहे हो, जिसका गौरव कर रहे हो, वो सब कुछ व्यर्थ है जब तक गुरु की सेवा नहीं होती है। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आराधना कोरी हो मने आशा। भक्त के जीवन का एक ही सार है, गुरु मुख पद्म वाक्य, लोटस स्टेटमेंट, मतलब अल्टीमेट स्टेटमेंट जो गुरु के मुख से आपके लिए निकला है वो कृष्ण का वाक्य है, कृष्ण का आदेश है। चित्ते ते कोरिया ऐक्य यानी सारा जीवन का जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी एंटीना है, उधर ही फोकस होना चाहिए। और कुछ आर ना कोरियो मने आशा, और कोई मन में आशा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए गुरु मुख पद्म वाक्य, जो गुरु कहते हैं उसको अच्छा लगे, बुरा लगे, कठोर लगे, कोमल लगे, पसंद वाला लगे, ना पसंद वाला लगे, उसको आपको स्वीकार करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। बाकी चीजों में जैसे हमारे प्रभुपाद थे ना, उनको कहा गया था 22 साल की उम्र में, नहीं 26 साल की उम्र में, कि आप पढ़े लिखे हो, आप अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाकर चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति का आंदोलन है उसका प्रचार करो। तभी वो तो गृहस्थ थे, अभी भी तभी गृहस्थ भी नहीं थे, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, लेकिन दिन रात उनको उनका चिंतन था कि ये गुरु जी की आज्ञा मैं कैसे पूरी करूं। और उनके ये गहरे चिंतन की वजह से कई बार स्वप्न में भी आए भक्ति सिद्धांत जी महाराज, और उन्होंने वही रिपीट किया जो 22 साल की उम्र में 1922 में 26 साल की उम्र में प्रत्यक्ष मुंह से कहा था कि आप ये करो, वही उन्होंने सपने में आके वही बताया। तो कंफर्मेशन कि जो मैंने सुना था वो कोई बाई फ्लुक ऑर्डर नहीं था उनका, ये उनकी इच्छा है। यहाँ तक कि जब वो गुजर गए तो उन्होंने एक लेटर लिखा था गुजरने के पहले 1936 में, उसमें भी उनको यही लिखा था कि मेरी इच्छा है कि आप पढ़े लिखे हो, आप अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाकर चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति के आंदोलन का प्रचार करो। तो उन्होंने भी उसी बात पर अपना ध्यान रखा कि उनको यही बताना है, और इन्होंने भी जीवन भर उसका ही चिंतन किया। 30 साल यहाँ प्रयास करने के बाद भी उनको लास्ट में भी, जब यहाँ पर राधा दामोदर में रहते थे प्रभुपाद जी, तो रूप गोस्वामी प्रकट हो गए, और रूप गोस्वामी के साथ में 6 गोस्वामी प्रकट हो गए, फिर सारी गुरु परंपरा प्रकट हो गई। उसी मंदिर में दर्शन दिया, उनको कहा कि अभी आप जाइए, अभी आप रेडी हो, आप कृपया पश्चिम जगत में जाइए। और वही बात दोहराई कि विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति आंदोलन का प्रचार कीजिए। तो जब ये गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य, जब ये चित्त ऐक्य हो जाता है, उसका एक हो जाता है गुरु की इच्छा के अनुसार, तो ये पूरा हरे कृष्ण आंदोलन निर्माण होता है। उनके उनका चित्त जो उन्होंने एक किया, एकता प्राप्त की, समरस हो गए उसके ऊपर, ही बिकेम वन विद द डिजायर ऑफ हिज गुरु, उसके वजह से इतना बड़ा विश्वव्यापी हरे कृष्ण आंदोलन खड़ा हो गया आज। जो उनके जाने के समय 108 मंदिर के नंबर पे था, आज 660 मंदिर के नंबर पे आ गया वो। और नंबर की गिनती भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, विस्तार हो रहा है उसका, 6 टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड उनके जाने के बाद में। तो कितना उनका ऐक्य का प्रभाव है, देखिए आप, हाउ मच स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इज हिज बीइंग वन विद द गुरु डिजायर। कितना गहराई में उन्होंने चिंतन किया इस विषय में, कितनी गहराई में दामोदर के मंदिर में बैठकर उन्होंने प्लान किया होगा मुझे उधर जाकर कैसे प्रचार करना है, कैसे लोगों को जीवन को परिवर्तित करना है, कितना गहराई में प्रचार किया होगा, विचार किया होगा उसका। उसका परिणाम आपको आज दिख रहा है, उनके एक एक चिंतन का परिणाम हम देख रहे हैं। तो ये बता रहे हैं उनको कि गुरु की सेवा नहीं प्राप्त होती है तो जीवन पूरा व्यर्थ है हमारा। तो लोकनाथ जी की आंखों में आंसू आए। अभी प्रसंग कैसा है, बहुत ठंड का मौसम था, अभी चल रहा है, अभी तो ठंड कम हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ठंड है ये। समझो आप 2:30 बजे उठे हो और 2:30 बजे आप जंगल में खड़े हो, यहाँ पर बहुत गहरी धुंध है, बहुत कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पर हाथ पांव कांप रहे हैं। उधर ये प्रसंग चल रहा है, अर्ली मॉर्निंग इन डार्क इन जंगल इन द फॉरेस्ट, ये बहुत उत्कट और बहुत गहरा संवाद जो है वो उस समय चल रहा है। उसी समय पर लोकनाथ जी इतने गदगद हो गए, बड़े विरक्त थे वो, दुनियादारी में उनको कोई रुचि नहीं थी, लेकिन इतने गदगद हो गए इसके भाव को देखकर कि तुरंत गले लगाया, उनको आलिंगन दिया और बहुत अश्रु प्रवाह किया उनके ऊपर, ड्रेंच्ड हिम विद टीयर्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड लव। और उसी समय दीक्षा दिया उनको, इमेजिन, क्योंकि वो बड़े विरक्त थे, उनको विश्व में थे ही नहीं वो, उनका पूरा भाव महाप्रभु चैतन्य के हृदय में था। और उसी समय बता दिया उनको कि मैं आपको स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हें शिक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी, मैं उसी अवस्था में है नहीं, नॉट पॉसिबल, तो आप जीव गोस्वामी के पास जाइए और वो आपको शिक्षा देंगे मेरे उपलक्ष में। तो लोकनाथ जी महाराज उसके बाद में किसी शिष्य को नहीं बनाया, एक ही शिष्य बनाया, लेकिन ऐसा प्रभुपाद जी बताते थे कि आई डोंट वॉन्ट मिलियंस ऑफ डिसाइपल्स, आई वॉन्ट वन डिसाइपल लाइक अ मून, एक चंद्र होगा ना तो रात के अंधेरे में उसकी रोशनी से हम चल सकते हैं, लेकिन अगर चंद्र नहीं होगा, बहुत सारे सितारे हैं और चमचमाते हैं, उनके प्रकाश में कुछ नहीं होता है, आप यू कैन नॉट वॉक इन द डार्क। तो लोकनाथ जी महाराज का एक मेव चांद जैसा शिष्य था नरोत्तम दास। तो हमें भी इस कैंप में वो देखना है, एक भाव समर्पण का है, माधव सिंह का, सवाई माधोराव का, कि मेरे पसंद जैसा नहीं वो चलेगा, अगर उसमें आप पसंद, आपको पसंद की है, आप खुश हैं, तो मैं भी उसमें खुश हूँ। अपनी खुशी को उनकी खुशी के साथ जोड़ देना, उनके सुख दुख को अपने सुख दुख के साथ जोड़ देना। Thy will be done। मेरी भी इच्छाएं हैं, आपकी भी इच्छा है, अब मैं आपकी इच्छा के साथ मेरी इच्छा को जोड़ रहा हूं। हम चाहते हैं कि भगवान आप मेरी इच्छा से आप जुड़ जाओ, ये हमारा माइंड रहता है ना, कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं, मैं कब से चिल्ला रहा हूं, कब से रो रहा हूं, मत्था टेक रहा हूं, बार बार आपके दस्तखत देता हूं, आप मेरी इच्छा सुनते ही नहीं। आई डोंट लिसन टू माई डिजायर। एक तो पूरी करो कम से कम, कितनी बहन से बता रहा हूं। तो अधिकतर जो लोगों की भक्ति होती है वो इस तरह से होती है, वो मंदिर में जाते ही बड़ा एप्लीकेशन लेके जाते हैं, बार बार वह एप्लीकेशन, मतलब एडेंडम एंड अपेंडिक्स एंड एनेक्सर, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके ऊपर अभी ये तारीख को डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम गए तो फिर एडेंडम यानी कि सप्लीमेंट, ये भी है भाई, इसको भी जरा देख लो, और अगली बार अगली और भी है, थोड़ा बड़े हो गए तो और भी अच्छी बीवी चाहिए, तब बच्चे थे तो बोल रहे खिलौना चाहिए, अभी बोल रहे बीवी चाहिए। तो हमारा सारा जो भक्ति है ना, वो उसका बेस होता है मेरी खुशी। भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे गोलोक जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके धाम में जाना है, मुझे यहाँ का वो जो बीमारी बुढ़ापा पसंद नहीं है। लेकिन जब तक हमारी खुशी की जगह पर भगवान की खुशी आ जाती है ना, उस स्थान पर, उस हृदय के सिंहासन पर हम बैठे हुए हैं, हम राजा हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं, उस सिंहासन से, मन के सिंहासन से कह रहा हूं, बाहर के छोड़ ही दो, मन के सिंहासन से हम उतरेंगे और उसमें भगवान को बिठाएंगे और बोलेंगे क्या आपकी आज्ञा है, क्या आपकी खुशी है, बताइए, मैं वही करना चाहता हूं जो आपको खुश करेगी, तब हमारी भक्ति वास्तव में शुरू होगी। क्योंकि भक्ति बाय डेफिनेशन निरपेक्ष है, इट इज नॉट मेरी अपेक्षा आपकी अपेक्षा, मिलेगी तो अच्छा है, ऐसा नहीं। मैं मेरी अपेक्षाओं को आपकी इच्छाओं से जोड़ दूंगा, और कुछ कुछ आपकी अपेक्षा नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा उसको, जो आपको पसंद आए वही करूंगा, वही बात करूंगा जो आपको अच्छा लगे, वही कार्य करूंगा जो आपको अच्छा लगे, जिसको आपको प्रसन्नता मिले। तो नरोत्तम दास जी ने जो भाव प्रकट किया है कि जिसको सेवा करनी होती है ना, उसको सेवा मिलती है, कभी भी भगवान की इस दुनिया में सेवा की कमी नहीं है। हम खाली बोलते क्या इधर आया क्या, मेरे को सेवा ही नहीं है। नरोत्तम दास जी ने रात को जाकर सेवा ढूंढ लिया और वो किया, और उसके माध्यम से गुरु को प्रसन्न भी किया, और महाप्रभु की जो इच्छा थी, उनको आज्ञा थी, वो भी पूरी की उन्होंने। ऐसा कार्य किया कि जो ना 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 बोल रहे थे, उन्होंने गले लगाकर आंसू बहाकर स्वीकार किया, शिष्य के रूप में दीक्षा दे दिया उनको। और वो नरोत्तम दास, क्योंकि उनकी ये भावना इतनी श्रेष्ठ थी, सेवा भाव, उसके वजह से वो इतने बड़े आचार्य बने आगे जाकर, उन्होंने बहुत चमत्कार किया आगे जाकर। एक चमत्कार ऐसा है कि वो वापस एक समय पर वो अपने गांव गए वापस, और वहां पर एक गोदाम था, बहुत बड़ा चावल का गोदाम था, पर उस चावल के गोदाम में ना कोई जाने का प्रयास करता था ना, तुरंत सांप आते थे, तुरंत, मतलब गेट पर ही, उसके प्रवेश द्वार पर ही। तो कई सालों से किसी ने हिम्मत नहीं की वहां जाने, क्योंकि वो सब लोगों को डर लगता था। तो नरोत्तम जी आए तो उन्होंने पता चला कि ऐसे ऐसे, तो वो कहते क्या है, वो सांप है वहां पर, सांप। तो नरोत्तम दास जी वहां पर चले गए ना, सारे सांप जो है सब बाहर निकल गए वहां से, एवरी सिंगल स्नेक जस्ट वॉक्ड आउट, कोई आवाज नहीं, कोई ऐसी मिसिंग, कुछ डरावना काम कुछ नहीं किया, पूरे सांप जो है ना, वो कई सैकड़ों सांप थे, वो सब निकल गए। और तो नरोत्तम दास जी अंदर गए तो उनको भगवान के 5 विग्रह मिले, 5 डीटीज सेट्स ऑफ लॉर्ड, उसमें से एक राधा ब्रजमोहन जो वृंदावन में है, ज्ञान गुदली की जगह पर है वो, जहां गोपियों और उद्धव का मिला मिलन हुआ था, और एक गोकुलानंद मंदिर में है जमुना किनारे में, चैतन्य महाप्रभु का ऐसा एक विग्रह है खड़ा हुआ, ऐसा हाथ में इंद्र रंग की मूर्ति है, और एक राधा ब्रजमोहन, राधा और कृष्ण है, इस मंदिर में नरोत्तम दास खुद रहे, उस मंदिर में अभी तक उनके मंदिर में वो था, उनका चादर पहना हुआ था, इतना जीर्ण हो गया था कि उसके एकदम पाउडर हो गई पूरी, लेकिन वो जब शॉल थी उसका दर्शन मैंने किया है, उनका श्रीमद भागवत है उस मंदिर में, उन्होंने जिस माला पर जप किया था वो माला उस मंदिर में है, उन्होंने जिस गोवर्धन शिला की पूजा की थी वो शिला उस मंदिर में है, और वो साक्षात ठाकुर जी जो उनकी पूजा की थी। तो अपने भाई जो राजा बने थे संतोष दत्त, उनको कहकर उन्होंने वो दो मूर्तियां बोट के माध्यम से वृंदावन में भेज दी और यहाँ पर स्थापना किया उनका, थोड़ा सा सेवा भी किया उनका। उसके बाद में जब वापस अपने गांव में गए तो प्रचार किया बहुत उन्होंने, ब्राह्मण तो थे नहीं, फिर भी उनके प्रचार की वजह से कई सैकड़ों ब्राह्मण उनके शिष्य बने। तो जो प्रस्थापित ब्राह्मण थे जो दीक्षा देते थे उनको बहुत क्रोध आया, उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण भी नहीं हो, कायस्थ हो और ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे आप, ये मर्यादा व्यतिक्रम है, ये आपका अहंकार है, आप अपने से बड़े वर्ण के लोगों को भी दीक्षा दे रहे हो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ब्राह्मण लोग खुद आपके चरणों में गिरते थे, उनका दीक्षा मांगते थे तो देते थे उनको। तो एक दिन क्या हुआ, सब लोग बहुत क्रोधित हो गए और सब पद्मा नदी के किनारे इकट्ठा हो गए विद्रोह में कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, मर्यादाओं को उल्लंघन कर रहा है, लोग क्या कहेंगे आगे जाकर, कैसे व्यवहार करेंगे अगर ऐसे बड़े लोग तो व्यवहार करेंगे। तो उस समय क्या हुआ, सबके आंखों के सामने पद्मा नदी के किनारे नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर के ऊपर एक सुनहरा जनेऊ प्रकट हो गया, गोल्डन डायमंड थ्रेड अपीयर ऑन हिज बॉडी, और इतना तेज निकला उनके शरीर से उस समय, और एक तरफ क्या कहते हैं उसको दैदीप्यमान तेजस्वी जनेऊ प्रकट हो गया उनके शरीर पर। जब ये घटना हुई तो वो सारे जो विद्रोही ब्राह्मण थे झगड़ा करने वाले सब उनके चरणों में गिर गए, उनके शिष्य बने। तो जो स्वयं गौरवशाली होते हैं उनका गौरव छुपा भी रहेगा, समझो जाति की वजह से किसी की वजह से, तो भगवान उनका गौरव प्रकट करते हैं सबके सामने। जैसे तुकाराम महाराज को बोला ना, सब तुम्हारे आगम नदी में बहा लो, तुम तो वैश्यवाणी हो, तुम्हें क्या अधिकार है भगवान की भक्ति करने का, और सबको दीक्षा देते घूम रहे हो। तो पंचायत बैठी है, शास्त्री आते बड़े कोई, वो कहते हमारा निर्णय हो चुका है, तुमने जितना अभंग लिखा है कितने श्लोक लिखे हैं सब नदी में डुबा दो। उसमें से कुछ चोरी करके खुद भी गाते थे वो, लेकिन तुम्हारा लिखा हुआ जो है डुबा दो। तुमने कहा ठीक है, पांडुरंग की इच्छा ऐसी है, डुबा दिया नदी में, और वहीं पर उपोषण के लिए बैठ गए फास्टिंग। 14 दिन के बाद इंद्राणी देवी नदी देवी जो है ना वो सूखे अभंग को लेकर प्रकट हुई और उनको सौंप दिया उन्होंने सबके आंखों के सामने। सब लोग मजा देख रहे थे, अच्छा हुआ देखो कैसा सबक सिखाया उसको, बड़ा आचार्य बंदे निकला था वैश्यवाणी, हाँ हमारा ब्राह्मणत्व का जो अपमान कर रहा है वो, अच्छा सबक सिखाया उसको, उपोषण कर रहा है, मरने दो अच्छा हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इंद्राणी देवी सबके सामने दर्शन देकर गिले नहीं सूखे ग्रंथ को लेकर बाहर आई, तब वो शास्त्री भी चरणों में गिरा उनके। तो भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन परीक्षा के साथ में अपने भक्त का गौरव प्रकट करते हैं। नरोत्तमदास जी का भी ऐसा ही हुआ, कायस्थ कायस्थ के उनको उनको बहुत उन्होंने गिलोना, क्या कहते ना, दे रियली क्रिटिसाइज्ड हिम एज लो बॉर्न, बहुत उसकी टीका घृणा की उसकी, लेकिन भगवान ने सबके सामने उसका गौरव प्रकट किया। भगवान हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने भक्तों का गौरव जो है प्रकट किया जाए। अभी ये इतनी घटना रात को हुई, देखो कौन साक्षी है उसका, लेकिन भगवान ने किसी भक्त को साक्षात्कार किया उसका और ये घटना प्रकट हुई। मतलब तुमने कहा नहीं था, पता है आपको, पता है कल रात को 2:30 बजे मैंने ऐसा किया, गुरुजन दीक्षा दिया मुझे, सुनो सुनो सब लोग सुनो, 2:30 बजे मेरी दीक्षा हुई है, अब मैं नरोत्तम दास बन गया हूं। नो पब्लिसिटी, जो खुद की पब्लिसिटी नहीं करते हैं भगवान उनकी पब्लिसिटी करते हैं, और जो खुद की में लगे हुए हैं भगवान कुछ नहीं करते उसके लिए, क्योंकि तो भक्त जो है खुद के लिए कुछ आता ही नहीं है। अभी संत जनाबाई थी हमारी महाराष्ट्र में, भगवान चक्की पीसने के लिए घर पे आते थे, उसको उसके घर पे आते थे, एक तरफ भगवान एक तरफ वो दोनों चक्की पीसते थे बैठ के, क्योंकि बहुत उसको घर में छल करते थे उसके ऊपर, बहुत कष्ट देते थे उसको। तो भगवान कभी भैंस धो रहे हैं, भगवान कभी कपड़ा धो रहे हैं, भगवान कभी बर्तन धो रहे हैं, मतलब एक घर घड़ी बोलता ना, घर घड़ी यानी सर्वेंट एट होम, ऐसे बनकर भगवान सब घर का काम कर रहे हैं उसको, ताकि उसको कष्ट न हो। उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था घर पे, बहुत कष्ट था उसको, तो भगवान रोज आकर उसके घरेलू काम करते थे। अभी सोचो, जिसके लिए भगवान आकर रोज घरेलू काम कर रहे हैं वो कितना महान भक्त है, लेकिन किसी को पता नहीं है, एक्सेप्ट विट्ठल, नोबडी नोज। और बहुत दिन ये सिलसिला चलता रहा। अब भगवान को खुद की इच्छा हुई कि ऐसे मेरी महान संत जनाबाई का गौरव विश्व भर में पता होना चाहिए, अगर एक दिन ये गुजर जाएंगे तो किसी को पता चलेगा नहीं। तो एक दिन क्या कि भगवान के घर पे आए चक्की पीसने के लिए, और जान बुझ के गले का जो हार है ना सोने का, बहुत रत्न भरा हुआ, तो सोने का पेंडेंट था उसके ऊपर, तो कहते हैं पदक यानी पेंडेंट, तो होता ना बड़े नीचे लटकने वाला, ऐसा बड़ा सोने का ऐसा हार निकाला और छोड़ के आए, जानबूझ के छोड़ के आए। वो तो अपना काम में बिजी थे, ये निकलने के समय उधर रख के आए। जब विठ्ठल वापस गए मंदिर में अपने, यानी प्रकट रूप में गए, अप्रकट मूर्ति के रूप में खड़े हो गए, तो वो हार गायब। तो जो श्रृंगार करते थे उन्हें दिखा रही है, हार किधर गया भगवान का, वो चोरी हो गई ना, मतलब चोरी हो गई, कौन आया, कोई सब जगह पहरेदार भेजे, कंप्लेंट किया तो सब जगह पर कंप्लेंट करने के बाद में किधर भी नहीं मिला, तो घर घर में जाके देखने लगे। तो घर घर में जब छान मारा तो जनाबाई के घर में मिला। अभी रूल क्या होता है, चोरी का माल आपके पास मिला, आप चोर, सिंपल, वेरी सिंपल। दुनिया ढूंढ रही है, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, उसको पता भी नहीं था मेरे घर पे, उसके घर में मिला, उसके बदन पे नहीं मिला, उसके पॉकेट में नहीं मिला, घर में मिला उसके, तो भी आश्चर्यचकित हो गई, वो समझ गई, अरे हमारे विठ्ठल भूल के चले गए। अभी उस समय क्या नियम था, अगर चोर को पकड़ेंगे ना सीधा सूली पे चढ़ना है, और कोई उधर कोर्ट कचहरी वकील 4 महीने 6 महीने 2 साल कोर्ट केस चल रहा है, वकील वाद विवाद कर रहा है, उल्टा सुल्टा केस को घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं है। चोर मिला माल के साथ, तुरंत अगले दिन सूली पे चढ़ाना है उसको। तो गया था अभी ये वो जो जनाबाई है बहुत चोर है, उसको जान से मारना चाहिए। तो सूली पे चढ़ाने का मतलब क्या होता है, उनमें एक सूली होती है बहुत जोरदार, वो ऐसे गाड़ते हैं जमीन पर, बहुत शार्प होती है वो, एकदम नोकदार होती है, ऊपर से एक फांस होता है, फांस ऊपर खड़ा करते हैं गले में डालकर उसको, और जिस पर खड़ा किया उसको फिर निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, वो जो गले में फांस है ना वो छोड़ देते हैं, तो वो लटक कर वो सीधे सूली पे गिर जाते हैं नीचे, तो जहां से गुदा द्वार होता है हमारा, वहां से सूली घुसती है, वो घुस के पूरा हार्ट को काट करके ऐसे दिमाग से बाहर निकलती है, मतलब फांसी भी एक साथ में है और सूली भी उसके साथ में है, कुछ ही क्षणों में डेथ हो जाती है। इमेजिन इतनी नोकदार होती है वो, इतना ऊपर से फेंकते उसके ऊपर की सीधे उसके वजन से वो नीचे से पूरा आंतों से बाहर निकल के हार्ट को फाड़ के सर से बाहर निकल जाती है, वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो ये अभी भगवान को बुला रही है, सब लोग बोल रहे हैं कितनी चोर है औरतें, गांव की औरत, हाँ भगवान का बहाना चलाती है, दंड मिलना ही चाहिए। तो कह रही है भगवान आ जाओ, विठ्ठला आ जाओ, तुम्हारे पदक की चोरी हो गई है, मैंने चोरी तो नहीं की है, कृपया करके आ जाओ। बहुत सुंदर भजन गाया उन्होंने, बहुत रो रो कर गा रही थी वो, तुम इतने भोले भाले कैसे हो, इतने भुलक्कड़ कैसे हो, घर पे आते हो और ये भूल के जाते हो, इतना भी ध्यान रखते नहीं हो कि तुमने निकाल के रखा तो उनको पहन के जाना चाहिए, ऐसे भी बोल रही है वो। और बाद में कह रही है कि भगवान मैं मृत्यु से नहीं डर रही हूं, मैं मृत्यु से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मृत्यु होगा तब आपका मेरा मिलन होगा, वैकुंठ का दर्शन होगा, मुझे पूरी मतलब पूरा विश्वास है इस बात पर, लेकिन मैं मृत्यु होने वाली है इस डर से नहीं आपको पुकार रही हूँ, मैं इसलिए पुकार रही हूँ कि लोगों को सत्य पता होना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को सत्य पता नहीं चला तो लोग समझेंगे देखो भक्त लोग चोर होते हैं, भक्ति भक्ति करते हैं बहुत सारी लेकिन असल में चोरी करते हैं, तो लोगों का भक्ति के ऊपर का, आपके ऊपर की जो भक्ति है उसके मार्ग के ऊपर विश्वास उड़ जाएगा लोगों का, दे विल लूज फेथ इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति विच इज फॉर यू। तो आइए विठ्ठल आइए, सत्य लोगों को बताइए। ऐसे बहुत उन्होंने ना ऐसा सुंदर भजन है वो, मैंने एक जगह पर उसको गाया था और उस पर प्रवचन दिया था, इतना सुंदर भजन है कि वो बोल रही है भगवान आ जाओ आप, लवकर जल्दी जल्दी आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ। तो फिर आखिर में उसको विष छोड़ने वाले ऊपर से, तो वो जो सूली ना सूली, वो विठल बन गए स्वयं। वो सूली के जगह विठल प्रकट हो गए और विठल ने अपनी गोद में लिया उनको सबके आंखों के सामने। अभी देखो जब सूली चढ़ते ना, सूली सऊदी अरब में भी जब सर काटते ना तो जनता इकट्ठा होते देखने के लिए, स्टेज पर करते कार्यक्रम पूरा। इसने चोरी किया था, सबके सामने उसके हाथ काटते हैं, और किसी ने और कुछ काम किया है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग किया है, सबके सामने सर काटते हैं उनका तलवार से, सब हजार लोग देखते हैं उसको। वैसे सूली पर चढ़ने वाला कौन है, वो पापी व्यक्ति कौन था वो, अरे ये था क्या, अरे वो मैं पता नहीं था कितना चोर होगा ये व्यक्ति, मैं तो कहता अच्छा आदमी है, ऐसे लोग देखने को आते हैं और लोगों को भी सबक मिले कि देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो नहीं करेंगे उसको, इसलिए वो सब जनता देखने को आती है। तो सब जनता के सामने वो सूली की जगह पर विठल प्रकट हो गए, राजा भी भाग के आए, चरणों में गिरा उसके। तो क्या किया भगवान ने कि मेरी एक भक्त है तो इतनी शुद्ध भक्त है और मैं भी प्रेरित हूँ रोज जाके इसकी सेवा करने के लिए, और ये अगर उसका गौरव प्रकट होए वही बिना चले जाएंगे तो उसका गौरव प्रकट कैसे होगा। तो भगवान ने ये लीला रचाई उसके गौरव को प्रकट करने के लिए। वैसे ही लोग सब निंदा कर रहे हैं कि ये नरोत्तम तो कायस्थ है, इतना शुद्र कास्ट का है और ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, दिशा भूल कर रहा है लोगों की। तो भगवान को इच्छा है कि मेरे भक्त का गौरव सबके सामने प्रकट हो, इसलिए पद्मा नदी के सामने सुनहरा जनी उसके शरीर में प्रकट किया नरोत्तम दास ठाकुर के। तो जो निंदा करने वाले थे वो सब चरणों में गिर गए उसके। हरदास ठाकुर का भी ऐसा ही किया भगवान ने, सब जगह निंदा, सब जगह छीत हो रही थी उसकी, लेकिन भगवान ने 12 जगह पर जो कोड़े लगाए उनको 22 जगह पर, उसके बाद नदी में फेंका गया उनको, तो लोगों का मर गया वो, लेकिन जीवित होकर वापस भेजा, तो जिन्होंने कोड़े लगवाए, जिन्होंने ऑर्डर दिया था, जो राजा थे सभी उस चरणों में गिरे उनके आगे। तो कहते आप सच्चे भक्त हो, मुसलमान थे सब लोग, सब चरणों में गिरे, माफी करो माफी करो। तो जल्लाद ने मारा था, उन्होंने भी कहा अरे हम तो उसको एग्जीक्यूशनर थे, हम लोगों ने खुद मारा था आपको, हमको कम से कम नरक से बचाओ, हम तो राजा का आगे का पालन कर रहे थे, प्लीज प्लीज हमको बचाओ। सबको माफ कर दिया, और फिर वही करते रहे जो पहले कर रहे थे। ऐसा नहीं कि अरे बड़ा कुछ मैं बन गया, अभी मैं सिंहासन में बैठूंगा गुरु बनकर, ऐसा नहीं, वही भाव था उनका। भगवान ने महाभारत में भी एक वाल्मीकि ऋषि थे, रामायण वाले नहीं और एक वाल्मीकि ऋषि थे, ऐसे ही शूद्र थे वो, चांडाल थे, शूद्र भी नहीं थे, कुत्ता खाने वाले घर में जन्म हुआ था उनका, लेकिन एकांत में भजन करते थे वो। तो भगवान ने उसका भी गौरव प्रकट किया पांडवों को भेजकर। तो उस समय एक विशेष बात किया उसने वाल्मीकि ऋषि ने, उन्होंने क्या किया, जब उनका गौरव प्रकट हो गया ना पांडवों के सामने, तो उन्होंने कहा भगवान आज तक मैं एकांत में गुप्त रूप में आपका भजन कर रहा था, बड़ा आनंद था उसमें, किसी को पता नहीं, लेकिन आज आपने मुझे एक्सपोज किया है, अभी मैं इस प्रकार के जीवन को जी नहीं सकता कि सब जनता जाने की मुझे कि मैं महान भक्त हूँ, महान आचार्य हूँ, महान वैष्णव हूँ, सब चरणों में गिरेंगे जैसे पांडव लोग अभी गिर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं जीना चाहता। तो उसी समय अपने पूरे तेज को युधिष्ठिर महाराज में अर्पण करके वो सीधे भगवान के आंखों के सामने उनके दर्शन करते हुए वैकुंठ धाम चले गए, गोलोक धाम। कृष्ण भगवान को देखते हुए अपने तेज को युधिष्ठिर महाराज में अर्पण करते हुए, तो भगवान ने योजना बनाई थी कि मेरा एक भक्त जो है चांडाल का पुत्र है और गुप्त रूप में इतनी महान भक्ति कर रहा है, कैसे भक्ति कर रहा है, जब युधिष्ठिर और भीमसेन गए ना उसको बुलाने के लिए, तभी ये तुलसी के वृंदावन के बीच में बैठकर हरिनाम ले रहा है, और पूरे शरीर में गोबर लगाया हुआ है, गाय का गोबर लगाया हुआ है पूरा आवरण में, और तुलसी वृंदावन में बैठकर अश्रुओं की नदियां बह रही है पूरे आश्रम में, और दूर से देखा भीमसेन ने और वहीं से प्रणाम किया, इतना महान भक्त हमें पता नहीं हमारे राज्य में। तब रानियों ने भोजन कराया उसको, और द्रौपदी को और कुंती को और रुक्मिणी को सबको बोध दिया उसने, एकदम समझ में आया कि अभी ये सबके सामने मेरा भगवान ने गौरव एक्सपोज कर दिया है। उसी समय वो गोलोक धाम चले गए, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा, भगवान ने अपने भक्त का गौरव प्रकट किया। ये हमको देखना है, जितना भक्त होता है ना वो उतना अपने गौरव को छुपाता है, कभी भी कभी अपने मुंह से अपने बखान नहीं करता है। अभक्त होता है वो भक्त होने का बहाना करके बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन जो भक्त वास्तव में है वो कभी भी अपनी भक्ति का बखान नहीं करता है। लेकिन ऐसे भक्त का भक्ति का बखान भगवान जरूर करते हैं, किसी ना किसी लीला के माध्यम से वो अपने शुद्ध भक्त की शुद्ध भक्ति को प्रकट कर लेते हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और भगवान भी बड़ा आनंद लेते हैं अपने भक्तों का गौरव करने में। हाँ, ये कंपटीशन है, इंटरनल कंपटीशन, ऐसी कि भक्त अपने भगवान का गौरव करने में लगे हुए हैं और भगवान अपने भक्त का गौरव करने में लगे हुए हैं, कौन ज्यादा गौरव कर रहा है, इसमें प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, प्रतियोगिता। तो हमें क्या देखना है, इन सब का सार ग्रहण करना है, मूड ग्रहण करना है कि नरोत्तम जी का मूड क्या था, माधव सिंह का मूड क्या, माधव राव का मूड क्या था। इसको हम समझ पाएंगे तो हमारे जीवन को बहुत धन्यता, बहुत ही उच्च स्थिति प्राप्त हो जाएगी, चेतना हमारी बड़ी ऊंची अवस्था में चली जाएगी। और संतों को जीवन का यही देखना है, संतों ने फिजिकल उनने बहुत कष्ट सहन किया, वो भी प्रेरणादायी है, लेकिन वो किस भाव के वजह से सहन कर पाए उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उनके हृदय का गहरा भाव क्या था उसको पहचानना बहुत जरूरी है, वो जब हम पहचानेंगे तो हमें भी आगे क्या करना है वो समझ में आएगा। खाली उनकी कहानी बताते रहेंगे लेकिन उनके भाव को नहीं पकड़ेंगे। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टू कैप्चर देयर इनर मूड, भगवान के भक्ति में उनका अंदर का भाव क्या था। और सबसे सभी भक्तों के जीवन का एक सर्वोच्च भाव है, वो है सेवा भाव। और वो सेवा भाव जब हम ग्रहण करते हैं तो सेवा भाव के माध्यम से हमारा और भगवान का रिश्ता बहुत पक्का हो जाता है और वो बड़ा ही सुरक्षित हो जाता है। मोस्ट डिवोटी बिकम्स मोस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम माया व्हेन इज एंगेज इन सर्विस। सेवा में जब रहता है वो, माया उसको छू नहीं सकती। सेवा ऐसा एक बॉन्ड है जिसमें माया बीच में नहीं आ सकती। इसलिए अगर हम शुद्ध भक्त भी नहीं होंगे लेकिन सेवा में रहेंगे तो माया हमको प्रभावित नहीं कर सकती। वी कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय माया व्हेन वी आर एंगेज्ड इन सर्विस टू कृष्णा। तो भागवत में गुरु गोस्वामी क्या बताते हैं, उपदेशानुरूप में नहीं, भक्ति अनुरूप में, ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। हमारे इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है उनकी सेवा में हमको लगना है। जब तक हमारे इंद्रिय, हमारे सेंसेस ऋषिकेश की सेवा में लगे हुए हैं तब तक दुनिया की कोई ताकत हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बरसाना आई कैम्प के माध्यम से हमको सबको ना तीव्रता से भगवान की सेवा में जुड़ने का मौका मिल रहा है। उसको यहां वहां देखकर आप उस मौके को गंवाना नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो हमने कभी इसके लिए प्लानिंग नहीं किया, अपने आप भगवान की इच्छा से हो रहा है, हमको मौका मिल रहा है, तो सारे स्वार्थों को छोड़कर हमको इस सेवा में लगना है। जितने भी हमारे मोटिवेशन है कि भाई अच्छे घूम के जाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ठंडी को एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी हमारे मोटिवेशन है सब बाजू में रखकर राधा रानी और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए हमको सेवा में लगना है। और ये जो कृपा हमको प्राप्त होगी ये जन्म जन्मांतर को भी प्राप्त नहीं हो सकती है, जो यहाँ पर प्राप्त हो रही है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।